जैसे कि आप लोगों को मालूम है, आपसे बात हुई थी मेरी टेस्ट के बारे में कि आप लोगों का टेस्ट इंशाअल्लाह ताला किताबुल ईमान से होगा। थोड़ा सा टेस्ट के मेट के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। सवाल जवाब इस तरह से होंगे कि जवाब तीन ऑप्शंस के साथ इंशाअल्लाह ताला आपको मिलेंगे। सवाल पढ़ के आप लोगों को उनमें से तीन में से एक ऑप्शन को क्लिक करना होगा। ठीक है, जो लोग कंप्यूटर लिटरेट नहीं है वो काइंडली टेस्ट को प्रिंट आउट कर लें और उसके बाद फिर वो इंशाल्लाह उसमें भर के हमें भेज सकते हैं। जी ये ऑनलाइन होगा, जी मल्टीपल चॉइस होगा और क्लोज बुक टेस्ट है। आप ना अपनी बुक्स ओपन कर सकते हैं और ना ही अपने नोट्स ओपन कर सकते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। और टेस्ट में इतना ही टाइम मैं आपको दूंगी जिसमें आप बस जल्दी जल्दी टेस्ट पढ़ के और उसका अटेम्प्ट कर सकें। एक्स्ट्रा टाइम नहीं होगा, कोशिश यही होगी कि उसके बाद खुद ब खुद टेस्ट सबमिट हो जाए। ऐसा नहीं होगा कि आप टेस्ट को लिए बैठे रहें या आपके पास इतना टाइम हो कि आप कुछ और कंसल्ट करें या कोई किताब खोलें, इतना टाइम होगा ही नहीं। इतना ही टाइम होगा कि आपका टेस्ट अगर आपने उस टाइम के अंदर अंदर नहीं किया तो टेस्ट खुद ब खुद चला जाएगा। क्या, तो इसलिए आप लोगों के लिए जरूरी है कि आप टेस्ट की पहले से तैयारी करके रखें। ऐसी तैयारी होनी चाहिए कि आप बस पढ़ें और आपको आ जाए। ऐसा ना हो कि आपको बहुत देर सोचना पड़े या एक एक क्वेश्चन पे आप बहुत ज्यादा टाइम लगाएं। ठीक है, ये बात पॉइंट नोट कर लीजिएगा क्योंकि बाज लोग शायद टेस्ट दूसरा टेस्ट भी लेके काफी दिन उसी को लेके बैठे रहते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। टेस्ट का मकसद ही ये होता है कि आपकी उस वक्त जो आपको याद है वो देखा जाए, ना कि हम सोचें फिर उसके बाद लिखें और उसको लिखने में भी 3-4 दिन लग जाएं कि आप लिख रहे हैं, सोच रहे हैं, फिर उसके बाद उसको अटेम्प्ट कर रहे हैं। ठीक है जी, अगर आप लोगों ने अपना कोई रिव्यू सेशन रखा हुआ तो अच्छा, मंडे को ऑन थर्सडे को आपने 9 o'clock पे रखा और मंडे को 10:30 पे किताबुल ईमान से होगा। ठीक है आप लोग, ताकि इसकी सही से आप लोग की तैयारी हो जाए। इस वजह से आप लोगों के लिए ये स्टूडेंट्स में से ही आप लोग मिलजुल के साथ मिलके तैयारी करेंगे वो ज्यादा जरा आसानी भी हो जाती है आपके लिए, अच्छा रहेगा वो इंशाल्लाह ताला। ठीक है, जी अच्छा, शाज के बारे में एक सवाल आया था कि शाज हदीस कौन सी होती है। तो जब भी कोई सिका रावी जो होता है, सिका रावी समझते हैं, सिका रावी कौन होता है, यानी उस एक रावी के मुकाबले में कुछ ज्यादा हाफजे वाला, ज्यादा ही मतलब आदिल कोई बात बयान कर देना, तो जो छोटा है, जो यानी छोटे से मतलब ये नहीं है कि उस की उम्र छोटी है, बल्कि अगर उसका हाफजा उससे कम है तो उसकी बात को, छोटे की बात को शाज कहते हैं। ठीक है, बड़े की बात को फिर कंसिडर किया जाता है, छोटे की बात को नहीं लिया जाता। सही है ना। और इल्म कम है, हो सकता है इल्म में कम हो या उसमें हाफजे में कम हो। ठीक है, तो उसकी बात को फिर शाज कह दिया जाता है कि इसमें शुजूज है इस हदीस में, क्योंकि इससे बड़े, बड़े से बस अब आप समझ लेना बात के कौन सा बड़ा, बड़े ने चूंकि कंट्रोडिक्ट किया है इसकी बात को। मसलन है, एक बंदा कहता है इस दीवार का रंग ग्रीन है, दूसरा आके कहता है नहीं इसका रंग ब्लूइश ग्रीन है। तो जो जिसने आके कहा है ब्लूइश ग्रीन है वो ज्यादा भी अकलमंद है, उसकी नजर भी ज्यादा तेज है, तो आप उसी की बात को लेंगे ना, तो आप फिर दूसरे की बात को जिसकी नजर थोड़ी कमजोर है कहेंगे कि नहीं इसकी बात में शुजूज है। ठीक है अच्छा जी, अब आप लोग इसमें से जो आप लोगों की तैयारी हो रही है जो किताबुल ईमान में से छोटे रावी से सेम सम जी, ये याद रखिएगा कि जितना भी जो पूरे चैप्टर में जितना भी कंटेंट है किताबुल ईमान में, तमाम का रिव्यू नहीं हुआ हुआ। क्योंकि जब हमारा रमजान का की क्लासेस हुई थी तो उसमें रिव्यू सेशन नहीं होता था। तो अगर आपकी रमजान में कोई क्लासेस छूट गई थी तो प्लीज उनको पहले कवर कीजिएगा, फिर उसके बाद रिव्यू सेशन जैसे आप लोगों ने तैयारी के लिए रखा हुआ तो फिर आप उसमें से करिएगा, लेकिन इसके बगैर नहीं करिएगा। क्योंकि थोड़ा सा ये होता है कि अगर आपने लेसन ही नहीं पढ़ा तो सिर्फ टेस्ट देने की खातिर, मैं नहीं चाहती कि आप कोई चीज बस इधर उधर से दो चार सवाल आप प्रिपेयर कर लें, वो फिर सही नहीं होगा। असल मकसद ही है कि आप किताबुल ईमान में यानी पूरी तरह से तमाम अहादीस से गो थ्रू हों, ठीक है? और यकीनन बाज लोगों की कुछ लेसन्स रह गए थे रमजान में, खास तौर पे क्योंकि अटेंडेंस बहुत ही कम होती थी रमजान में, इसी वजह से हमने दो क्लासेस के बाद फिर क्लासेस नहीं की थी। तो वो दो ही क्लासेस होंगी मेरा ख्याल है जहां तक। तो अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह अगर आपने उनको कवर कर लिया बहुत अच्छा, लेकिन जिन्होंने नहीं कवर किया अभी तक तो प्लीज वो पहले रमजान की जो उनका था वो पहले कवर करें। और ये जहन में रखिएगा कि जिनके पास आईडी है वही लोग लॉग इन करके टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे, जो लोग एज लिसनर आते हैं वो नहीं कर सकते, ठीक है? ठीक है ना, ये क्योंकि ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए है, हो सकता है बाद में अवेलेबिलिटी हम आपको कर दें कि आप लोग बाकी लोग भी अगर लेना चाहें टेस्ट तो ले सकते हैं ऑन देयर ओन अपनी कन्वीनियंस या अपनी उसके लिए, लेकिन अदरवाइज ये सारा टेस्ट जो है ये उन्हीं लोगों के लिए है जो क्लास में रजिस्टर्ड स्टूडेंट है। इसलिए अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराई भी अभी तक तो फिर आप टेस्ट नहीं ले सकेंगे, सही है ना? तो ये काफी इसके अंदर खास तौर पे मेराज की और ये आगे की अहादीस ऐसी थी जो रमजान में हुई थी। आप लोगों से सबसे मैं ये कहूंगी कि आप लोग कवर करिएगा। किताबुल ईमान एक लंबा चैप्टर है, इसी वजह से मैं आपको साथ हदीस का नहीं दे रही, जो हदीस की अकसाम, ये जो मकबूला हदीस, ज़ईफ़ा हदीस, आहाद, मतवातिर, ये सब आपने पढ़ा था, ये अभी आप लोगों को टेस्ट में नहीं आएगा। इसलिए अब आप उसके ऊपर ना अपना वक्त लगाइएगा। किताबुल ईमान में आप लोगों ने माशाल्लाह शुरू से काफी लोगों ने बास अहादीस को याद भी किया था, तो अगर याद की नहीं है उनको भी रिवाइज कर लें। लिखने को तो नहीं जुबानी दी जाएगी ना ही तर्जुमा करने को दी जाएगी, अहकामात ज्यादा पूछे जाएंगे, ठीक है? तो इसलिए आप लोग इस तरह से तैयारी करिएगा कि अहकामात आपको उनके अंदर बहुत अच्छे तरीके से आ जाएं। आपको हदीस आईडी के साथ ही आप आइएगा और हदीस आईडी ही आपको अपने टेस्ट के लिए डालना पड़ेगा, ठीक है? तो इंशाअल्लाह ताला। अब कोई अगर कोई बात इसमें से किताबुल ईमान में से आप लोगों को पूछनी है तो पूछ लीजिए, वरना मैं आपसे हदीस के बारे में एक बात पूछना चाहती हूँ। अभी मैंने आप लोगों का टेस्ट बनाया तो नहीं है, इसलिए मैं कोई खास एग्जांपल्स तो नहीं दे सकती कि किस तरह, क्योंकि मल्टीपल चॉइस जरा बनाना थोड़ा सा और उसमें ज्यादा काम करना पड़ता है, इसलिए कि दूसरे क्वेश्चंस बनाना तो आसान होता है, आपने ही जवाब लिखने होते हैं, इसमें जवाब भी लिखना है और इसमें गलत जवाब भी ढूंढ के लिखने होते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा ज्यादा ये काम होता है। लेकिन आप परेशान ना हो, इंशाल्लाह अगर आपने सारी क्लासेस ली हुई है और सही से तैयारी की है तो कोई भी मुश्किल नहीं होगा, आएगा इसी में से। देखिए मैं आप लोगों से जब क्लास में भी रिव्यू सेशन में आप लोगों से सवाल पूछती हूँ, मैंने कभी भी बाहर से नहीं सवाल पूछे। जब भी मैंने कोई ऐसा सवाल पूछने लगूँ तो मैं आप लोगों को बताती हूँ उस वक्त के मैं ये बाहर से पूछ रही हूँ, अगर आप नहीं भी जवाब दे सके तो कोई मसला नहीं है, लेकिन कभी भी मैं आपसे ऐसा सवाल नहीं पूछा कि जो क्लास के बाहर से हो, जो आपने कवर किया होता है सिर्फ वही पूछती हूँ। नहीं, आप वरीड ना हो, इसमें नहीं कोई बात। जब भी इम्तिहान के लिए फिक्र आए तो ये याद रखिएगा कि एक इम्तिहान वो है जो हमने जिसका नतीजा आखरत में निकलना है, उसके लिए हमें तैयारी ज्यादा बेहतर करनी है, बजाय इसके हम छोटे छोटे इम्तिहानों के लिए परेशान हों। भूलने की बीमारी, कोई मसला नहीं इंशाल्लाह। इफ आप कैन डू टेस्ट मंडे 27, वी कैन डू मोर बेटर तैयारी दिस वीक, वी आर डूइंग फॉर फोर्थ जूस तजमाइंड। अच्छा चले, आप लोगों में से कितने लोग कहते हैं, इसलिए क्योंकि इसके बाद आपको किताबु तहारा का भी टेस्ट देना है, तो जब किताब तहारा का टेस्ट आएगा तो साथ ही फिर आपका हदीसी अकसाम और इसका भी टेस्ट आएगा। जो लोग कहते हैं कि 27th को टेस्ट हो वो 1 टाइप कर दें, और जो कहते हैं कि नेक्स्ट मंडे को, मंडे कौन सी तारीख आ रही है, मंडे 20th, जो कहते हैं 20th को हो तो वो 2 टाइप करते हैं। अच्छा अच्छा आप करेंगे 20th को, ठीक है। वैसे हम सबका जी तो यही चाहता है कि इम्तिहानों से, हम कितना घबराते ना, जी यही चाहते हैं इम्तिहान हो ही नहीं, आगे आगे हो जाए, उससे टलेंगे नहीं। लेकिन चलें, इतने सारे लोग अगर कह रहे हैं कि 27th को हो तो आपके लिए दोनों ठीक है, चले आपकी ज्यादा तैयारी है। तो इतने सारे लोग अगर कह रहे हैं 27th को हो तो चलें ठीक है, इंशाल्लाह ताला 27th को रख लेते हैं। फिर ऐसा करते हैं कि नेक्स्ट वीक मैं आपको मंडे को फिर आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस पूछ लूंगी, ठीक है, ऐसा कर लेते हैं फिर। तो नेक्स्ट हम रिव्यू सेशन इस तरह से रख लेते हैं कि आप लोगों का इसका होगा किताबुल ईमान का, आप लोग तैयारी करके आएगा, ऐसे समझिएगा कि मंडे को आपका टेस्ट है, ठीक है ना। फिर आपको रिव्यू सेशन में ये पता चल जाएगा कि आपकी कितनी तैयारी है और कितनी और आपको करनी है, सही है। तो फिर इंशाल्लाह ताला, अच्छा आप लोग मुझे और लंबे से लंबा टाइम खींचना चाहते हैं, नहीं 11:45 पे शुरू, 45 मिनट्स में इंशाल्लाह ताला सही हो जाएगा। अच्छा थोड़ा सा मुझे बच्चे के साथ थोड़ी सी मुश्किल होती है, आप लोगों को भी बेयर करना पड़ता है उसके साथ। चलिए ठीक है, मैं कोशिश पूरी मेरी होगी कि 11:30 पे ही शुरू किया जाए। तो अगर मैं आ सकी 11:30 पे तो ठीक है, अगर नहीं आ सकी तो फिर 11:45 पे इंशाल्लाह ताला स्टार्ट कर लेंगे। आमीन, अल्लाह ताला हक अदा करवा दे इंशाल्लाह। तो लेकिन आप लोग मेरे साथ ये प्रॉमिस ज़रूर करें 27 पे, तभी मैं रखूँगी कि आप लोग ऐसे ही समझें कि नेक्स्ट मंडे को ही आपका टेस्ट है। क्योंकि जब हम दूर देख लेते हैं ना कि अभी बहुत दूर है टेस्ट, तो फिर हमारा रवैया क्या हो जाता है कि अभी तो काफी दिन पड़े हैं, कोई ऐसा मसला नहीं ना, कर लेंगे तैयारी। तो आप लोग मंडे को तैयारी के साथ आइएगा ताकि जब मैं सवाल करूं तो आपको खुद पता चले कितना और अभी आपने तैयार करना है। उसके बाद फिर ये हो जाएगा कि आपके पास फिर एक वीक पड़ा होगा, ठीक है इंशाल्लाह। हाँ बस ये, बस ये 20th को तैयारी के साथ आए, लेकिन टेंशन के साथ ना, सही है, टेस्ट की टेंशन नहीं होगी, ठीक है ना इंशाल्लाह। तो ये अब आप लोग इसको कोशिश करें कि इसको और ज्यादा बेहतर तरीके से, क्योंकि काफी सारी अहादीस हैं और बहुत अहम अहादीस हैं, बहुत अहम अहादीस हैं। आपको पता है हमारा ज्यादा टाइम किताबुल ईमान पे ही लगा है, जितना हमने इसके ऊपर, यानी तकरीबन हमारे काफी महीने इसमें लग गए हैं। तो इसलिए इसको बहुत अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा। अच्छा चलें, अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आप डिसअपॉइंट नहीं करेंगे, बहुत अच्छी बात है, इसका अंदाजा अच्छी तरीके से तैयारी करेंगे। चलें इंशाल्लाह ताला, लास्ट लेसन जो था हमारा उसका रिव्यू नहीं हो पाया था, ऐसा ही है ना, लास्ट लेसन का भी हमने रिव्यू नहीं किया ना। जी कौन सी हदीस से था हमारा लास्ट, वो निकाल लें इंशाल्लाह। जी लास्ट वीक का कौन सी, लास्ट टू लास्ट वीक हुई थी ना हमारी क्लास, तो उसमें कौन सी, चलिए मैं यहीं से आप लोगों से पूछ लेती हूँ इंशाल्लाह ताला। चलिए जी, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फाऊजु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، آمين يا رب العالمين. كتاب الصلاة، अगर next week हमने उसका review करना तो फिर ये ना हो कि ये रह जाए ना। चले जी, रेडी आप लोग इंशाल्लाह ताला, चले बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जी आप बताइए नाजनीन के सलाह का माना क्या है, लोवी माना क्या है और शरई माना क्या है? जी आपको आवाज आ रही है मेरी? मैंने आपको अनम्यूट किया हुआ है, आपको आवाज आ रही है? जी आप बताइए नाजनी, आप बताइए। जी मैंने आपको अनम्यूट किया हुआ। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह
वरकातुहु। सलाद किसी भी अच्छी चीज को कहते हैं, सला रहमी को भी बोला गया है, अच्छी दुआ देना, असर असर के दरूद भेजना, कोई भी अच्छा जिक्र, वो सारा सलाद है। और लुगी माना इसका जिक्र है। और बताओ
शरई माना क्या है?
शरई माना इसका है कि अल्लाह का जिक्र मखसूस कैफियात में रहकर और पूरे एक्शंस को कंप्लीट करना, आखिर तक उसको पूरा करना।
ठीक है, शाबाश। यानी अगर आपसे लुगवी माना, वो तो बहुत सारे माने हैं वैसे तो सलात के, इसीलिए हम कहते हैं ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे सलात भेजना, तो मतलब ये होता है कि दुरूद भेजना, ठीक है। लेकिन जब आपसे पूछा जाए इसका शरी माना क्या है, तो फिर नमाज को सलात कहते हैं, जिसको अभी आपने बोला कि अल्लाह का जिक्र मखसूस कैफियात के साथ करना, तो वो क्या है असल में? नमाज है कि आपने तकबीर से लेकर सलाम तक फेरने तक जितनी भी आपने बातें ये सारा कुछ किया है, इसका नाम सलात है। तो अच्छा ये बताएं आगे नफीसा, आप बताएंगी कि अजान कैसे शुरू हुई?
फिर कई लोगों को ख्वाब आया, तो फिर उसमें हजरत अब्दुल्ला बिन जैद और हजरत उमर को सेम ही ख्वाब आया, और उन्होंने कहा कि लोगों को इस तरह से ये अजान के अल्फाज भी उनको खाम में आए, तो फिर हजरत आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बिलाल को कहा कि आप बुलाओ लोगों को ना, अल्लाह वक्त पर बताया उनको किस तरह से अजान देनी है।
अच्छा, तो क्या ये सारी अजान ही ख्वाब में आई थी?
जी अजान के अल्फाज आए थे, उनको आए थे, और कुछ मेरा ख्याल है हजरत
जी बिल्कुल अजान के अल्फाज के साथ, यानी अल्लाह ताला की तरफ से ही देखे एक इशारा है ना कि अजान के अल्फाज तक आए थे। तो ये नहीं आपने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद फरमाया कि जैसे यहूदियों का वो एक हॉर्न सा होता है वो बजाते हैं, या आपने ये इनका क्रिश्चियंस का देखा होगा कि ये घंटा सा होता है वो बजता है, एक बेल सी लगाई होती है वो बजती है। तो इस चीज को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए पसंद नहीं फरमाया कि ये उनका तरीका है ना। तो हाँ, हमारे लिए जो अल्लाह ताला ने एक तरीका दिया वो सबसे बेहतरीन तरीका। तो अच्छा अब ये बताएंगे उन सहाबी का नाम जिन्होंने फतह मक्का के बाद अजान सिखाई थी, जिनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह मक्का के बाद जिनको अजान सिखाई थी। जाहिदा आप बताएंगे? ज़ायदा बेज़ात आप बताएंगे?
जी अस्सलाम वालेकुम। जी ये हजरत मखज़ूरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु,
जी अबू मखज़ूरा जो थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको अजान सिखाई थी, और उसमें उनको क्या किस तरह से अजान सिखाई थी ये आप बताएंगी? फरजाना चौधरी आप बताएं कि क्या मतलब उनको किस तरह से अजान सिखाई थी?
इनको जो थी शहादत बैंक जो थी वो चार चार दफा, जो अकामत थी वो दो दो दफा।
सही है। इस वक्त हम कितनी दफा बोलते हैं?
जी दो दो दफा।
जी दो दो दफा, तो क्या सही है फिर?
दोनों ही सही है। अगर बिलाल की जैसे कि वो शहादत बैंक अगर दो रही है तो फिर जो इकामत है वो एक दफा होगी, और अगर हम अबू मखज़ूरा की भी लेते हैं तो फिर चार छह दफा शहादत है और दो दो दफा इकामत में कही जाएगी।
शाबाश, वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड सुजाना। अच्छा जी ये बताएं शाजिया नासिर, तो हजरत बिलाल को क्यों कहा गया कि आप अजान दें? शाजिया नासिर शराहत अमजद आप बताएंगी? حضرت بلال کو ہی کیوں چوز کیا گیا کہ آپ
کہا گیا تھا کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی آواز اونچی تھی تو ان کو حکم دیا تھا.
شاباش, یعنی ان کو حکم دیا تھا کہ آپ اذان دیں کیونکہ ان کی آواز بہت بلند تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن زید کو فرمایا تھا کہ آپ ان کو اذان کے الفاظ بتاتے جائیں تو وہ اذان دیتے جائیں گے. اور اس کے بعد یہی مؤذن تھے, حضرت بلال ہی مؤذن تھے نا, یہی اذان دیا کرتے تھے. تو آپ دیکھ لیں کہ اذان بھی ہمیں اللہ تعالیٰ نے خود سکھائی ہے, کیونکہ دیکھیں یہ جو خواب ہوتا ہے اس کے اوپر انسان کا اپنا تو بس نہیں ہوتا نا, خود تو نہیں ہم خواب بتاتے اور بناتے اور اس میں الفاظ کہتے. تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی یہ ایک اشارہ آیا اور ہماری اذان بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائی ہے. اچھا جی, نسرین عابد آپ بتائیں کہ اگر مسجد میں لائیو اذان ہو رہی ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ جواب دینا چاہیے. تو اس کا جواب کیا ہے؟
جو مؤذن کہے وہ ساتھ ساتھ دہرانا ہے.
جی شاباش, جو مؤذن کہے اس کو ساتھ ساتھ دہرانا ہے, لیکن کسی جگہ پہ ڈفرینٹ بھی ہے. جب وہ کہے حی علی الصلاح,
پھر اپنا بعد میں جو دعا پڑھنی ہے تو.
ہاں نہیں, جب وہ کہتا ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح تو اس وقت کیا کہنا؟ جی جی بالکل, پہلے نہیں, پہلے اذان کو سننی, وہ الفاظ کو سننا ہے ان کے یعنی الفاظ کے ساتھ ساتھ نہیں بولنا, پہلے الفاظ کو سننا ہے پھر اس کے بعد جواب دینا, ٹھیک ہے. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے, تو حکم جہاں پہ آ جاتا ہے نا تو اس کی نافرمانی کرنا پھر وہ صحیح نہیں ہے. اچھا, اب آپ لوگوں نے یہاں پہ دیکھ لیا ہے نا کہ حضرت بلال کو جو جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اذان سکھائی, اور ابو محذورہ کو جس طرح سے اذان سکھائی, اور آپ نے دونوں اذانیں بھی دیکھ لیں کہ دونوں میں فرق کیا ہے. اگر آپ کے سامنے کبھی, کیونکہ ہم تو وہی اذان سننے کے عادی ہیں جو بلال رضی اللہ عنہ والی تھی, تو اگر ابو محذورہ والی اذان اگر کبھی ہم سن لیتے ہیں تو یہ نہیں کہنا کہ نہیں یہ تو غلط ہے اور یہ کیا, یہ کون سی اذان. ہم نے حدیث پڑھ لی ہے تو اب ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ اذان یہ بھی اگر ہے تو صحیح ہے, ٹھیک ہے. اچھا مریم آپ بتائیے گا اذان کے بعد کی جو دعا ہے وہ بتائیے گا کہ دعا کتنی ہے, کہاں تک ہے, کیا ہے. وعلیکم السلام و رحمتہ اللہ. جی اذان کے بعد کی جو دعا ہے اس کے الفاظ بتائیں گی. شاباش, مسنون الفاظ بس یہیں تک ہیں. شاباش, ویری گڈ, بہت اچھا. شاباش. اچھا اب یہ بتائیں گے کہ اگر کلاک پہ یا فون پہ اذان ہو رہی ہو, کیونکہ وہ تو لائیو اذان نہیں ہے, تو کیا کرنا چاہیے؟ رافیہ آپ بتائیں گی.
رافیہ بیگم.
جی جی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جی اگر نماز اگر فون پہ اور گھر پہ کمپیوٹر پہ ہو رہی ہے تو بہتر ہے کہ ہم اس کا جواب دیں, لیکن جو اذان کی آواز جو مسجد سے آتی ہے ہمیں حکم ہے کہ فرض ہے جیسا, اس کے بعد ہمیں جواب دینا چاہیے.
اچھا ٹھیک ہے شاباش, اچھی بات ہے, لیکن اگر نہیں بھی جواب دیتے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا, اس لیے کہ وہ اس حکم میں نہیں آتی جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا نا کہ اذان کے بعد جواب دو, تو یہ حکم ہے. اور اسی طرح تم بھی کرو, کہو جب تم اذان سنو تو جس طرح مؤذن کہتا ہے اسی طرح تم بھی کہو, تو وہ اس حکم سے باہر ہے یہ چیز, یہ جو ریکارڈنگ والی ہے یہ ہے, کیونکہ کبھی اس کی بیٹری اوپر نیچے ہے, کبھی وہ غلط ٹائم پہ اذان ہو رہی ہے, کبھی کوئی اور مسائل اس کے اندر ہو رہے ہیں, تو وہ ایک لائیو اذان نہیں ہے. مگر اگر جواب دیا جائے تو وہ بہتر ہے, مگر اگر نہیں دیں گے تو ایسا نہیں کہ جو اس حکم کی خلاف ورزی نہیں ہوگی. مگر اگر آپ مسجد میں جا کے وہاں پہ اذان کا جواب نہیں دیتے تو وہ اس حکم کی خلاف ورزی ہو جائے گی. इफ मैनी मस्जिद गिव देम इट्स सफिशिएंट टू गिव ओनली वन मस्जिद. हाँ जी बिल्कुल, फिर एक बस अजान का जवाब देंगे और काफी हो गया फिर, वरना तो हम जैसे हमारे मुल्कों में तो बहुत सारी अजानें होती रहती हैं, बल्कि गड़मड़ हो जाती है. तो फिर आप एक ही अजान को फॉलो करेंगे और उसको जिस चीज की सबसे क्लियर आवाज आ रही होगी आपसे करीब तक, तो आप उसका जवाब दे दें. जिस कॉमन टू ऑब्जर्व व्हेन द अजान इज गोइंग ऑन मोस्ट ऑल वीमेन आर टॉकिंग, अजान के वक्त टॉक कर रही होती है. अच्छा अजान के वक्त तो नहीं बात करनी चाहिए. अच्छा जी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की खिलाफ वर्जी हो गई ना, सिन तो खुद ही जाहिर है एक सिन ही हो गया ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है. अगर अच्छा ये बताएं कि आप अपने बच्चे को कोई बात कहती हैं कि ये करो और वो नहीं करता, तो क्या वो गलत कर रहा है कि सही कर रहा है? रॉन्ग कर रहा ना. तो ये तो हम मामूली से लोग हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी तबाह करने का हुक्म अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमा दिया, अगर वो किसी चीज का हुक्म देते हैं और फिर आप उसको नहीं करते बल्कि उसे उलट करते हैं, अपनी बातें कर रहे हैं उसमें, तो फिर सोचें कि ये कितनी गलत बात है. ठीक है, तो आप उनको फिर ये हदीस बता दें अगर वुमेन आर टॉकिंग. जी मैंने अभी आपको बता दिया है कि फोन वाली अजान का क्या हुक्म है. अच्छा ये बताइए आप समिया अख्तर, क्या मसनून दुआओं में एडिशन करना दुरुस्त है? जैसे अभी ये आया कि ला तुखलिफुल मियाद या इस तरह से ये एडिशन की भी है, तो क्या ये दुरुस्त है इस तरह से मसनून दुआओं में एडिशन करना?
मसनून दुआ में हम एडिशन नहीं कर सकते, जैसा वो हदीस थी कि नबी का की जगह रसूली का कर दिया था, सहाबी ने सुनाते वक्त जो दुआ सिखाई थी नबी पाक ने, तो आप ने सुनाया था जैसे मैंने कहा है वैसे ही कहें.
बिल्कुल,
हम बचना चाहिए, दहेज करना चाहिए, यानी गुनाह का खतरा है
जी,
एहतियात करनी चाहिए मसनून दुआ में और फर्ज चीजों में कि हम अपनी तरफ से कहीं भी इजाफा न करें.
शाबाश, ये बहुत अच्छा एक इन्होंने मुफस्सल जवाब दिया तफसील के साथ, इन्होंने बिल्कुल सही बात उसको को भी कोट किया जो मैं अभी यही बात आप लोगों से करना चाहती थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को दुआ सिखाई थी. और देखिए नबी और रसूल में कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है, लेकिन उन्होंने सिर्फ इतनी सी चेंज कर दिया, ठीक है, इतना सा चेंज कर दिया अल्फाज का, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर भी मना फरमाया कि नहीं इतना सा भी चेंज मत करो. और ये सोच लें कि ये भी दुआ तो है ही, इसके अंदर तो काफी इस तरह से एडिशन है ही, लेकिन इसके अलावा आप देख लें मसनून दुआएं जहां पे आती है, मसलन रब्बाना आतिना फिर दुनिया हसना, तो इसकी एंड में लोग कहते हैं वकीना आदाब अन्नार, वकीना आदाब अल कब्र, वकीना आदाब अल हशर, वकीना आजा. आप मसनून दुआओं में जरूर आपने एडिशन कर, आप वैसे ही अलग से दुआ कर लें कि अल्लाह ताला हशर के दिन की सख्ती से हमें महफूज रखना, या अल्लाह ताला उस दिन के हमें रुसवाई से महफूज रखना. और जो भी आपकी दुआएं भले मांगे, आप कितनी दुआएं मांगे, जितनी आप मांग सकते हैं मांगे, कोई इसमें मसला नहीं है, लेकिन जो मसनून दुआ है उसको वैसे ही रहने दें. ठीक है, जो कुरानी दुआ है उसको वैसे ही रहने दें, उसमें कोई तब्दीली, उसमें कोई रद्दो बदल ना करें और उसमें कोई एडिशन ना करें. क्या वॉइस नहीं आ रही, पैर टॉप भी नहीं आ रही? अच्छा नो वॉइस ऑन फोन. चला चले मैं दोबारा मिला लेती हूँ उनको. आप लोग इतनी देर दरूद शरीफ पढ़े मुझे नहीं पता आपने फोन वालों ने कितनी बात सुनी और कितनी नहीं सुनी, मैं पता नहीं कब डिस्कनेक्ट हो गया, माजरत है आप लोगों से. सिर्फ मैं ही कह रही थी रब्बना आतिना वाली दुआ में बहुत सारे लोग एडिशन कर लेते हैं, तो कुरानी और मसनून दुआओं में कोई एडिशन या कोई चेंजिंग, चाहे एक जैसे सिमिलर वर्ड्स, अब नबी और रसूल में जैसे मैं आपको बता रही थी कोई ऐसा खास कोई फर्क नहीं है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना भी गवारा नहीं फरमाया, एज इट इज फरमाया कि इसको कहो, हालांकि कोई फर्क तो नहीं पड़ता था. اس سے ہمیں یہ دلیل ملتی ہے کہ ہم کبھی بھی دعاؤں کو چینج نہ کریں, کبھی بھی دعاؤں میں ایڈیشن نہ کریں. ہم نے اگر وہ دعا بھی مانگنی ہے, مثلا اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بخش دے, اللہ ہمیں بھی آخرت کے عذاب سے بچا, اللہ ہمیں بھی اس دن کی رسوائی سے بچا, تو بجائے اس کے کہ ہم وقنا عذاب النار کے آگے ایڈیشن کر دیں, اس کو اور لمبا کر دیں, وقنا عذاب الحج, وقنا عذاب المیزان, وقنا عذاب القبر, ہم ویسے ہی اللہم نعوذ بک من عذاب القبر وہ الگ سے ایک دعا ہے, وہ مانگ لیں یا اپنے ورڈز میں مانگ لیں کوئی دعا, لیکن اس میں ایڈیشن مت کریں. مسنون دعاؤں کو ایز اٹ از رہنے دیں. یہ بات سمجھ آ گئی نا سب کو؟ اس چیز میں بہت احتیاط کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, اچھا جی, کہاں تک ہم پہنچے تھے؟ اچھا امریندار, آپ بتائیں گی کہ جب اذان سنتا ہے شیطان تو اس کا کیا حال ہوتا ہے؟ جی امریندار, جب شیطان اذان سنتا ہے تو اس کا کیا حال ہوتا ہے؟ وعلیکم السلام.
جی شیطان فوراً آزاد کر کے بھاگ جاتا ہے اور تکبیر کی ہوا خارج ہو جاتی ہے, اور جب تکبیر کہی جاتی ہے اس وقت بھی بھاگ جاتا ہے اور اس کے بعد واپس آ جاتا ہے.
شاباش, ٹھیک ہے. اچھا یہ دیکھیں آپ, اتنی بڑی بات ہے نا, جو لوگ چاہتے ہیں ہمارے گھر سے شیطان رخصت ہو, اذان دیں اپنے گھر میں, اذان مطلب بچوں سے اذان دلوائیں اپنے گھر میں. یعنی یہ ایک چیز, اور آپ بچوں کو بتائیں گے نا وہ بھی بہت ہی اس چیز کو انجوائے کرتے ہیں کہ واقعی ایسے ہوتا ہے کہ شیطان ایسے کرتا ہے, تو اس لیے بچوں کو بتائیں. اور اس وقت جب آپ اذان دیں گے, دیکھو بھی کیسا واقعی شیطان شیطان ہی ہے کہ اس وقت بھاگ جاتا ہے لیکن اذان کے ختم ہوتے ہی واپس آ جاتا ہے, کیونکہ اب نماز میں جو وسوسے ڈالنے اس نے. تو یہ جو ہمیں, ہم سب کو یہ شکایت ہوتی ہے نا کہ ہم کیا کریں, نماز میں اتنے خیالات آتے, اتنے خیالات آتے, وہ سب شیطان ڈال رہا ہوتا ہے. یہ حدیث سے ثابت ہے, خود کہتا ہے کہ فلاں بات یاد کرو. آپ نے کبھی نوٹ کیا وہ جو چیزیں گمی ہوئی ہوگی نا وہ بھی نماز میں یاد آ جاتی. کوئی ایسا کام تھا سارا دن سے بھولا ہوا تھا, وہ کام کرنا تھا, ایک دم نماز میں خیال آتا ہے ہائے میں نے تو یہ کام کرنا تھا. اچھا وہ سارا دن یاد نہیں آیا لیکن اس وقت یاد آ گیا. تو یہ واضح دیکھیں حدیث میں ہے کہ وہ آ کے کہتا ہے کہ فلاں بات یاد کرو, فلاں بات یاد کرو, جن کا خیال بھی نہیں ہوتا. کیا حتیٰ کہ وہ ہم سے رکعت بھلوا دیتا ہے, اور میں نے دیکھا ہے کہ جو ہی خیال آتا ہے کوئی واقعی رکعت بھول جاتی, یاد ہی نہیں رہتا تیسری تھی چوتھی تھی. واقعی ایسا ہوتا ہے, ایک سیکنڈ کے لیے بھی اگر ہم یعنی غافل ہوتے ہیں نا تو فوراً بھول جاتا ہے کہ کون سی رکعت پڑھ رہے تھے. ہم ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں غافل ہو سکتے. ٹھیک ہے, اچھا اب مجھے بتائیں انیلا, آپ بتائیے. اچھا نہیں ابھی نہیں آپ کی باری آئی. عشرت فاطمہ آپ بتائیے کہ ان وسواس کا علاج کیا ہے؟
جی ایک دعا بتائی تھی انہوں نے جو سنت ہے, اور ہم اگر دعا بھی یاد نہیں ہے تو تین بار ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر اپنے بائیں کھانے کی طرف ایسے اشارہ تھوک بھی سکتے ہیں, اس طرح کر کے پھر ہم ہماری نماز کنٹینیو کر لیں.
ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, شاباش. طیبہ عارف آپ بھی اسی بات کا جواب دیں.
جی سر آپ نے کیا کہا؟
جی جب شیطان وسواس ڈالتا ہے نماز میں کہ نماز کی رکھ دو, بلاتا ہے وہ, تو اس کا علاج کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا؟
اس میں ہے کہ جو ہے ایک بار بڑھ کے اعوذ باللہ من حمزہ ونفخہ ونفثہ, کہ بڑھ کے جو ہے لیفٹ سائڈ پہ تین دفعہ جو ہے وہ چھو کر جائے گا دل کی سائڈ
سے. شاباش.
اور اگر یہ دعائیں آتی تو پھر یہ اعوذ باللہ من الغریم من الشیطان الرجیم, سوری میں نے غلط کی تھی, اعوذ باللہ من الغریم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ.
جی بالکل, تو یہ دعا پڑھ کے پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھ لینی چاہیے, اس کے بعد جو بھی نماز میں جیسے بھی آپ کنٹینیو کر رہے ہیں ویسے کنٹینیو کریں. لیکن دیکھیں وسوسہ شیطان کی طرف سے آئے گا, یہ تو دیکھیں حدیث سے بھی پتا چل گیا. یہ کوئی ایسی انہونی بات نہیں ہے کہ آپ جیسے بہت سارے لوگ بےچارے اتنے پریشان ہو جاتے ہیں کہ وہ یعنی اتنی حد تک زچ ہو جاتے ہیں نا کہ وہ سوچتے ہیں کہ نماز پڑھنے کا فائدہ ہی کیا. تو آپ یہ دیکھ لیں کہ جب حدیث میں آ گیا کہ شیطان آئے گا اور وسوسہ ڈالے گا, تو یہ کوئی انہونی بات, ہمارے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہو رہا. بلکہ یہ ایک یعنی حدیث ثابت ہے, شیطان کا ایک عمل ہے, اور یہ ہر ایک انسان کے ساتھ وہ کوشش کرتا ہے. لیکن ہمیں چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج بھی بتا دیا, تو اب جب علاج پتہ چل گیا تو پھر ہمیں پریشان ہونے کی بجائے کیا کرنا چاہیے, اس علاج کو کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا, ہاتھ کہاں تک اٹھانے ہیں نماز میں, انسان کہاں تک اپنے ہاتھ اٹھائے؟ شہناشا آپ بتائیں گی.
السلام علیکم
و رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام.
جی کندھوں تک.
جی کانوں تک بھی اٹھا سکتے ہیں, کندھوں تک بھی اٹھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, کانوں تک بھی اٹھانا درست ہے. ٹھیک ہے, شاباش. اچھا جی, یاسمین اقبال آپ بتائیے رفع یدین کے بارے میں, کب کب کرنا چاہیے؟
وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رفع یدین کب کب کرنا چاہیے؟
جی رفع یدین کا طریقہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدین کیا ہے, پہلے تکبیر تہمیرہ کے وقت انہوں نے رفع یدین کیا, دونوں ہاتھ مونڈی تک اٹھے تھے. پھر جب ہم جب سورہ فاتحہ اور کوئی بھی سورت پڑھتے ہیں اور رکوع میں جانے سے پہلے انہوں نے رفع یدین کیا, رکوع سے جب نیچے جانے لگی سجدہ کرتے وقت پھر رفع یدین کیا.
اچھا,
رکوع میں جاتے رکوع سے اٹھتے تو بھی رفع یدین کرتے, یعنی تین دفعہ انہوں نے کیا تھا.
شاباش. اچھا, یہ دو باتیں اس کے اندر میں آپ لوگوں کو کلیئر کرنا چاہتی ہوں. ایک تو یہ کہ اس والی حدیث میں ایک اور دفعہ کا ذکر نہیں ہے, مگر وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں. مثلاً آپ چار رکعت پڑھ رہے ہیں تو اتحیات تشہد سے اٹھنے کے وقت جب آپ تشہد پڑھتے ہیں تو اس کے بعد اٹھنے وقت جب آپ اٹھتے ہیں تو تب بھی آپ رفع یدین کرتی ہیں, اللہ اکبر کر کے اٹھتے ہیں نا تو کھڑے ہوئے تو رفع یدین کر لیا. اچھا, دوسری بات کیا ہے کہ رفع یدین میں نے دیکھا بعض لوگ جب سجدے میں جانے لگتے ہیں سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد پڑھ کے اس کے بعد اللہ اکبر کرتے ہیں تو ساتھ ہی رفع یدین کرتے ہیں. رفع یدین اس وقت نہیں کرنا کہ آپ نے اس کو اللہ اکبر کے ساتھ کیا, بہت کامن دیکھا میں نے. رفع یدین رکوع سے سر اٹھاتے ہی کرنا ہے. اس وقت آپ کیا پڑھ رہے ہوتے ہیں؟ اس وقت تو نہیں آپ اللہ اکبر کر رہے ہوتے ہیں نا, تو اس وقت آپ کہہ رہے تھے سمیع اللہ لمن حمید, اس وقت ہی آپ نے رفع یدین کر لینا. ٹھیک ہے, سجدے جاتے وقت نہیں کرنا. ہاں جی, جب رکوع سے سر اٹھانا ہے اس وقت آپ کیا پڑھ رہے ہوتے ہیں؟ سمیع اللہ لمن حمیدہ پڑھ رہے ہوتے ہیں نا, تو اس وقت ہی آپ نے ہاتھ اٹھا لینے. کیونکہ حدیث میں یہ آیا ہے کہ جب دیکھیں وَيَقَالُ ذَلِكَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ مِنَ الرُّكُوعِ, یہ نہیں آیا کہ سجدے میں جاتے ہوئے, بلکہ فرمایا کہ جب سر اپنا اٹھایا رکوع سے تب. وَيَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَ, واضح حدیث ہے نا. نہیں, اس وقت جب آپ سجدے کی طرف جا رہے ہوتے ہیں اس وقت تو کیا پڑھ رہے ہوتے ہیں؟ ہاں, اس وقت کیا کہہ رہے ہوتے ہیں جس وقت آپ سجدے کے لیے جانے لگتے ہیں؟ اللہ اکبر. ٹھیک ہے, آپ اللہ اکبر کہہ رہے ہیں تو اس وقت آپ اٹھا رہے ہیں ہاتھ. اب بیچاری کئی بہنیں جو ہے نا وہ یہ سمجھتی ہیں کہ اللہ اکبر کے ساتھ اٹھانے, ایسا نہیں ہے. یہ دیکھیں کلیئر, آپ حدیث کے الفاظ دیکھیں, ترجمے کو مت دیکھیں, حدیث کے الفاظ دیکھیں. اور اس وقت آپ کہتے تھے یقول سمیع اللہ لمن حمیدہ, تو اس وقت لکھا ہوا نا یفعل ذلک. ٹھیک ہے, ولا یفعل ذلک فی السجود, اور سجدے کے وقت نہیں آپ یہ رفع یدین کرتے تھے, یعنی سجدے پہ جس وقت ہم اللہ اکبر کر کے دوسرے سجدے میں جاتے ہیں پھر اللہ اکبر کر کے سر اٹھاتے ہیں, اس وقت نہیں کرتے تھے. ٹھیک ہے, یہ بات سب کو کلیئر ہو گئی ہے؟ کیونکہ یہ غلطی بہت کامن ہے, اس لیے مجھے آپ کو بتانی تھی. چلے صحیح ہے, الحمدللہ. اچھا جی, جب یہ بتائیں کہ رفع یدین کی مخالفت میں کیا دلیل دی جاتی ہے, یہ آپ بتائیں گی. صباحت آپ بتائیے رفع یدین کی مخالفت میں کیا دلیل دی جاتی ہے, تاکہ پھر آپ کو پتا ہو نا کہ اس کا جواب بھی کیا. جی جی
سر, اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ شروع میں ایسا کرتے تھے لیکن آخر ایسا کرنا چھوڑ دیا تھا.
اچھا, تو آپ اس کا پھر جواب کیا دیں گی؟
کہ ہم یہ جواب دیں گے کہ کافی سارے صحابی سے اور اشرا مبشرین سے اور یہی ہمیں ہیں وہ لوگ کرتے تھے. اور کوئی بھی ایسی صحیح حدیث ثابت نہیں ہوتی ہے جس میں انہوں نے رفع دین نہیں کیا ہو.
اچھا یہ بات آپ کی صحیح ہے, بہت سارے صحابیوں سے یہ ملتی ہے, دلیل ملتی ہے. لیکن میں کچھ اور بھی چاہوں گی کہ اور بھی ٹھوس بات بتائی جائے. انیلا شجاع آپ بتائیں گی, کیا بات آپ بتائیں گی اس میں؟ جی 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 انیلا جی وعلیکم السلام. ہاں جی
ہاں جی, یہ انہوں نے جو ایک روایت نکل کی تھی نا امام ترمذی نے, جس میں ابن مسعود سے انہوں نے وہ بتایا تھا کہ وہ جب پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس حدیث کو لیتے ہیں تو اس کے اینڈ کے اوپر جو وہ الفاظ ہے نا وہ والے ایک تو وہ الفاظ جو ہے وہ نہیں لکھتے, جس میں انہوں نے بعد میں کہا ہے کہ وہ انہوں نے ہاتھ بعد میں نہ اٹھائے, ایک وہ والی حدیث تھی. اور دوسرا وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ وہ جی بغلوں میں اپنی بت چھپا کے لے کے آتے تھے, تو جب وہ ہاتھ اٹھاتے تھے تو وہ اس لیے کرتے تھے کہ وہ شروع شروع میں لوگ جو ہے نا بغلوں میں بت چھپا کے لے آتے تھے, تو اس لیے وہ جب بت گر جاتے تھے تو یہ اس لیے انہوں نے کہا تھا, بعد میں یہ حکم انہوں نے منسوخ کر دیا تھا.
صحیح, میں اس کا جواب پوچھ رہی ہوں کہ آپ کیا جواب دیں گے اس کا؟
ہم کیا جواب دیں گے؟ کیا مطلب
جب آپ کو یہ بات نہیں, جب آپ کو یہ والے وہ اعتراض کرے گا کوئی آپ کے سامنے, تو اب آپ اس کو پروف کیسے کریں گے کہ رفع یدین کی دلیل؟
ڈیفائن کیسے کریں گے؟ ٹھیک ہے, ایک تو یہ ہم اس کو ایسے پروف کریں گے کہ اس کے لیے ہمارے پاس اتنی زیادہ تعداد میں احادیث ہیں کہ ہم اس کو جھٹلا ہی نہیں سکتے. دوسرا امام بخاری کی لکھی ہوئی کتاب ہے جس کے اوپر انہوں نے 21 صحابہ سے جو ہے نا یہ روایت نقل کی ہے, اور کتاب کا نام ہے کتاب جز رفع دین, تو اس میں انہوں نے سارا بیان فرمایا اور اتنی بڑی تعداد میں متواتر احادیث بھی ہیں. تو ہمارے پاس یہ سب سے بڑی ٹھوس حدیث ہے کہ اس کے بعد اس کے لیے ہمارے پاس صحیح احادیث ہے, تو اس لیے ہم اس کو رد کرتے ہیں کہ یہ رفع دین کا ہم اس کو نہیں کہہ سکتے کہ نہیں کرنا چاہیے, رفع دین کرنا چاہیے. اس کے لیے ہمارے پاس بڑی ٹھوس احادیث ہے.
شاباش, اچھا یہی جواب انہوں نے سباحت نے بھی دے دیا. اس کے علاوہ بھی کوئی بات کہے گا, کوئی بات بتائے گا؟ یہ کون ہے, محمد صدیقی تحسین یا آپ؟ جی محمد صدیقی کے نام سے. اچھا میرے خیال میں کون ہے یہ, بالکل آپ کا آواز کا نہیں آ رہا, بچوں کی شور آ رہا ہے لیکن آپ کا نہیں. میری نا آپ کا تو یہاں پہ نام ہی نہیں ہے. آپ کہہ رہی نا آپ جواب دیں گے, آپ کا اس میں نام نہیں ہے. اور 937, اچھا یہ نام نہیں لکھا ہوا, ٹھیک ہے بتائیں آپ اس کا جواب بتائیں. جی
جی, اس میں ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ ترمذی نے ابو داؤد نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ملتی ہے کہ حضرت صلی اللہ شروع میں ہاتھ اٹھایا بعد میں نہیں اٹھایا, لیکن ان کی اگر حدیث کو پڑھا جائے تو ان کے اینڈ میں یہ بھی ساتھ ہی لکھ دی کہ حدیث متصل نہیں ہے, اس وجہ سے ہم پھر ان کو نہیں لے سکتے. تو میں یہ جواب ان کو بتانا چاہیے کہ جو حدیث ہے یہاں لکھی ہوئی وہ متصل نہیں ہے.
شاباش, یہ بھی بالکل صحیح بات ہے, بالکل صحیح. اور کیا دلیل دیں گے؟ یہ ساری دلائل آپ لکھ لیں, میں چاہ رہی ہوں کہ آپ لوگوں کے پاس تمام دلائل موجود ہوں. آپ لوگوں نے پہلے بتایا کہ تواتر کے متواتر احادیث ملتی ہیں, پھر اتنی کثیر تعداد میں ملتی ہیں, پھر حدیث کی کوئی بھی صحاح ستہ میں کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جس میں یہ روایت نہ ہو. ٹھیک ہے, یہ جو عبداللہ بن عمر والی ہے یہ تمام صحاح ستہ میں ہے یہ بات. اچھا پھر اور کیا بات ہے؟ اور بھی ایک بات ہے جو کہ ایک اور دلیل بھی ہے. راشدہ کالیا آپ بتائیں گی؟ جی یہ ون بائی ون آپ ساری باتیں لکھتے جائیں. حکم آ جائے, وہ کہیں گے حکم ہے ہی نہیں ہے, کہاں ہے حکم. دیکھیے ہمیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی بتائیں.
میں 3 مہینے کے بعد کلاس میں آئی ہوں, ریوائز کر سکتی ہوں.
کوئی مسئلہ نہیں, کوئی مسئلہ نہیں, کوئی مسئلہ نہیں.
میں پہنچی ہوں, ٹھیک ہے, سننے کے لیے آئی ہوں. انشاءاللہ پڑھ کے آپ کو بتاؤں.
انشاءاللہ. نفیسور یہ کون ہے, 732668 سے؟ اچھا ارم آپ ہیں. اچھا ارم آپ بتائیے. جی جی ارم, جی सही सही। और इसके अलावा भी मैं दलाइल चाहती हूँ ना, ये वाली दलील तो दी है सबने, और दलाइल क्या है, और इसके हक में आप क्या दलाइल पेश करेंगे जी? ये 508336 से जो है ना, ये अब आप दोबारा मैं आपको लाइन ओपन करती
हूँ।
राजिया
वो
जी,
मैंने सारी रिलीज तो नहीं किया, लेकिन जो लेक्चर सुना था तो याद आ रहा है, जो बुद्ध वाली दलील है ना, उन्होंने कहा हाथ उठाने पे बुद्ध गिर जाते थे, इसलिए तो वो पहली, उन्होंने जो सर ने बताया था, मैंने कहा पहली दफा में वो बुद्ध गिर गए, तो फिर जो मुझे याद आता
जी। और दूसरी बात ये देखिए ना कि मदीना में कौन से लोग थे जो बुत रख के आते थे? मुनाफिकीन तो अपने आप को वैसे ही प्रूव करते थे, कहते मुनाफिक रख के आते थे, मुनाफिकीन तो अपने आप को प्रूव करते थे कि हम तो सबसे ज्यादा पक्के मुसलमान हैं, वो बुत क्यों रख के आएंगे कि उनके बुत ही गिर जाए। हाँ, तो मतलब यानी कोई इसकी लॉजिक नहीं बनती, क्योंकि ये भी बहुत सारे लोग ये चीज कहते हैं। और किसकी बारी नहीं आई? शाजिया नासिर आपकी आ गई बारी। अच्छा जी, चले आप बता दीजिए फिर, आप बता दीजिए जी। जी शाबाश जी शाबाश, यानी इस बात को भी ज़ईफ करार दिया गया है कि ये जिसके अंदर ये रवैया दैन का नहीं जिक्र है, बिल्कुल। और कोई बात, कोई और बात रह गई जो कोई बताना चाहता हो? पे मुझे बताएं अगर कोई और बात बताना चाहता है। अच्छा, आप लोगों ने एक बात शायद नहीं नोट की, एक और पॉइंट रह गया था आप लोगों से। मालिक बिन हुवैरिस एक सहाबी हैं जो 9th हिजरी में मुसलमान हुए थे, और उनकी तरफ से रिवायत है रफा यदैन की, बुखारी में मौजूद है। और जाहिर है कि जब वो, जब आपके सामने कोई कहेगा ना, वो ये नहीं कहेंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रफा यदैन नहीं करते थे, वो कहेंगे वो करते थे लेकिन एंड में आके उन्होंने छोड़ दिया था। समझ आई बात? ये कोई भी नहीं कहता कि नहीं करते थे, मगर वो कहते क्या हैं कि सारी जिंदगी करते रहे, आखिर में आके नहीं किया। तो आखिर में ही तो आके ये सहाबी जो थे मुसलमान हुए थे, मालिक बिन हुवैरिस, तो उन्होंने ही ये रिवायत किया रफा यदैन के बारे में, तो फिर कैसे कह सकते हैं? ठीक है ये बात। 9th हिजरी में तो वो मुसलमान हुए, वो तो हुए ही एंड में मुसलमान। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल कब हुआ था, कौन सी हिजरी में? अब आप देख लें कि जो सहाबी एंड में आके मुसलमान हुए, उन सहाबी की रिवायत को तो हम लेंगे ना। अब मालिक बिन हुवैरिस, मालिक बिन हुवैरिस और बुखारी में इनसे रफा यदैन की रिवायत मौजूद है, तो इसलिए हम ये कहेंगे कि हम, आप ये नहीं कह सकते कि एंड में उन्होंने छोड़ दिया, क्योंकि जितनी आप रिवायत बताएंगे ना, ये जो सारे आपने पॉइंट्स बताए, वो ये कहेंगे कि हाँ ठीक है, ये तो सारी बातें सही हैं, ठीक है, बुखारी में भी इतनी रिवायात हैं, किस सहाबा से रिवायात जमा है, इसी तरह चलो ये भी बात मान ली, बुतों के गिरने की भी बात मान ली कि चलो ये भी नहीं सही है, या इतनी सारी तवातुर के लिहाज आती है, तो वो कहते हैं कि हम मानते हैं वो करते थे लेकिन एंड में नहीं किया, तो इसका आपको जवाब आना चाहिए। समझ आ गई बात? क्योंकि कोई भी इसको डिनाई नहीं कर सकता, क्योंकि इतनी सारी अहादीस है कि कोई ये बिल्कुल अंधा ही होगा जो कहेगा कि नहीं करते ही नहीं थे, क्योंकि कैसे डिनाई करेंगे ना, खुद सोचे इनकार करने की कैसे करेंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये रिवायत बुखारी में जो है ये इन सहाबी से मुतल्लिक है, ठीक है? तो जब आप ये बताएंगे ना, तो उस वक्त फिर ये प्रूफ हो जाएगा कि जब इतनी एंड में भी आके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर यानी रफा यदैन किया, तो अपनी आखिरी उम्र में भी वो रफा यदैन कर रहे थे, तो उसके बाद तो कोई जवाब ही नहीं मिलता कि फिर इस चीज का इनकार किया जाए, ठीक है? अच्छा जी, ये बताएंगे हजरत अब्दुल्ला बिन उमर की कहां कहां रिवायत मौजूद है? ऐसे तो मैंने आपको तो मेरे ख्याल बता ही दिया। अच्छा सर आ गए, said that he left Rafa Yadin. सब किताबों, हाँ जी सब. लास्ट वन, हाउ पीपल सेड दैट ही लेफ्ट लेफ्टन. यानी आप ये सोचे ना कि लोग ये कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिर उम्र के अंदर आके छोड़ दिया था. तो मैंने आपको ये बताया कि ये सहाबी जो थे इन्होंने 9th हिजरी में मुसलमान हुए थे. तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात कब हुई, आप लोगों ने क्या लिखा है, 10 10 हिजरी में आपने लिखा. 10 हिजरी में तो हज हुआ था, 19 हिजरी में. 19 हिजरी तो नहीं हो सकता ना, आप देखें कब हुई थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात.
ये सर ने लिखा है कि 10 हिजरी के शुरू में.
किसने किसने लिखा है कि 10 हिजरी के शुरू में. 10 हिजरी में तो हज हुआ था ना, 10 हिजरी में तो हज हुआ था. और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात किस महीने में हुई थी, पहले महीना बताएं. तो महीना तो सबको ही पता होगा मेरे ख्याल. महीना कौन सा था, रबीउल अव्वल. अच्छा आप मुझे बताएं 10 हिजरी में हुआ था हज के नहीं हुआ था. हज कौन से महीने में होता है. इस्लामी महीने आते हैं आप लोगों को. हज कौन से महीने में होता है, जिल हज में. 10 हिजरी के जिल हज में जब वो हज पे मौजूद है जिसपे खुतबा हज्जतुल विदा है, तो फिर वफात कैसे. वफात अगर उसी रबीउल अव्वल में हो गई तो रबीउल अव्वल तो पहले गुजर गया. हाँ एक साल बाद तो नहीं हुआ, लेकिन देखिए ना जिल हज है तो उसके बाद क्या है, मुहर्रम, उसके बाद सफर, उसके बाद रबीउल अव्वल. तो 11 हिजरी में वफात हुई है. सबने 10 10 लिखा हुआ, हालांकि मशहूर कितनी बड़ी बात है कि 10 जिलहज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज किया था, हज्जतुल विदा जिसको कहते हैं. जी 11 में हुई है, समझे ना. तो ये इतने सारे लोगों ने 10 इस पे लिखा हुआ था. चले अब आप लोग लाजमी तौर पे सीरत की क्लास मेरे ख्याल में अटेंड करें. आप सबके लिए मास्टर सीरा क्लास अटेंड करना. इतनी तो बात पता होनी चाहिए ना कि कब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई है. तो इन सहाबी का मैंने क्या बताया सर, आगे अगर आ गए तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा. आ गए या क्या. अच्छा जी ठीक है, इंशाल्लाह ताला फिर हम यहाँ पे क्विट करते हैं क्योंकि मैंने भेज दिया रिकॉर्डिंग. अच्छा देख लें. बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है कि आपने अपने बड़ों को नहीं देखा होगा रफ़या नयन करते हुए, क्योंकि उनके पास नहीं पहुंची होगी यह हदीस. हम ये नहीं कह सकते उनकी नमाजें गलत, उनकी तो नमाजें हुई ही नहीं, वो तो ऐसे नहीं. अगर नहीं किसी के पास हदीस पहुंची, नहीं किसी को पता था, वो अलग बात है. लेकिन अफसोस उनके ऊपर होगा जिनके तक हदीस पहुंच गई फिर भी वो अपनी बात पे अड़े हुए कि चूंकि हमारे बड़े नहीं करते थे इसलिए हमने नहीं करना. ठीक है, समझ आ गई ना बात. नहीं नहीं आपको मैं किसी को स्पेसिफिक नहीं कह रही कि आप सॉरी कि नहीं करने की जरूरत, पूरी क्लास को ही कह रही हूँ जिन्होंने लिखा और बाकियों ने उससे एग्री किया. किसी मैं नहीं समझी थी कि आपने 10 इस चीज पे लिखा हुआ, 11 तो किसी ने भी नहीं लिखा, जिसका अंदर पूरी क्लास ही उसमें शामिल है ना जी. चलिए ठीक है, हम रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह आप सुनते हैं और फिर नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ताला हम रिव्यू करेंगे, फिर उससे नेक्स्ट टाइम टेस्ट होगा. ठीक है, ये सबको बात क्लियर होनी चाहिए, यहाँ पे लिख भी दे ताकि कोई भी ये ना करे टेस्ट वाले दिन कि हमें पता नहीं था. और किस चीज का टेस्ट होना है वो भी आप सबको पता होना चाहिए कि कौन सी किताब का टेस्ट है. ठीक है, जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा. सुभानक अल्लाहुम्मा बिहमदिक नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.